ओम शांति।
हम सभी के बीच में हमारे आदरणीय भ्राता सुभाष चंद्र जी ज्ञान सरोवर से पहुंच चुके हैं, तो हम जोरदार तालियों से पहले उनका स्वागत करते हैं। मैं आप सभी को एक बार कहूंगी कि एक बार खड़े होकर के अपने अपने स्थान पर जोरदार ताली से भाई जी का स्वागत करें, इससे आपके आसपास जो निंद्रा देवी घूम रही है वो भी भाग जाएगी। सभी खड़े होकर के जोरदार तालियों से धन्यवाद। बैठ जाइए। भाई जी के परिचय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। भाई जी 34 वर्षों से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और 44 वर्ष हो गए हैं इनको ज्ञान में आए हुए, और वर्तमान समय ये ज्ञान सरोवर के डाइनिंग विभाग में सेवा देते हैं और इनके परिवार के अंदर 60 मेंबर ज्ञान में हैं। तो इसके लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए कि एक ही परिवार के 60 मेंबर्स ज्ञान में चल रहे हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर भी इनके जो भाई बहन हैं वो 10 भाई बहनें समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और आदि रत्नों के पालना के अनुभव इनके हैं। विदेश यात्राओं के भी इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और बहुत सारी आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाया, उनको परिचय दिया। साहित्य में इन्होंने क्या वो दिन पुण्य लौट आएंगे, प्रकाशमणि दादी जी के बारे में 100 लेख लिखे हैं। ऐसे ही बहुत सारी स्मृतियां इनके हैं जीवन के अंदर। तो आज हम सबका परम सौभाग्य है जो हमारे बीच में इतनी महान विभूति पहुंची हुई है, जो आज हम सबको ये बताएंगे। आज का जो टॉपिक है, अपने आप को चार्ज कैसे करें। सभी चार्ज होना चाहते हैं ना? होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें जो जो चार्ज होना चाहते हैं। तो आज भाई जी हम सबको वो विधि बताएंगे कि कैसे हमने अपने आप को चार्ज करना है। ओम शांति।
ओम शांति। थोड़ा जोर से बोलिए, ओम शांति। देखो, आप हमारे पास नहीं आए इसलिए हमें आपके पास आना पड़ा। वैसे ये जो भट्टी है ऊपर ज्ञान सरोवर में होती है ना, तो उसका मैनेजमेंट हम करते हैं। तो सविता बहन का मैसेज आया कि आप अभी इधर आ जाओ, सब इंतजार करें। तो चलो, ड्रामा में जो भी है ऊपर, तो हमारे पास वो हमारे जो बीजेपी के सारे लोग बहुत पहुंच रहे हैं उधर। तो अभी मैंने कहा नहीं, चलो थोड़ा सा आप सभी महान विभूतियों का दर्शन करके आ जाते हैं। तो बहन जी ने जैसे बताया कि आपने आपको चार्ज कैसे करें, वैसे चार्ज तो सभी को करना आता है। मोबाइल सबके पास है? हाथ उठाओ, किसके पास है? सभी के पास है। अच्छा, तो मोबाइल से हम क्या क्या करते हैं आजकल? मोबाइल से हम क्या क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो। पैसा ट्रांसफर कर से पैसा हमारे आ सकता है, गीत बजा सकते हैं, और बोलो, फोटो निकाल सकते हैं, सेल्फी निकाल सकते हैं, और एयर टिकट, ट्रेन टिकट, और कैलकुलेटर है देखो, उसमें हम लोग सुबह उठने के लिए अलार्म भी लगा सकते हैं, है ना? देखो, शुरू में हमारे पास मोबाइल होता था तो सिर्फ उठाना और बस इतना ही बात करते, फिर धीरे 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 उसमें एडिशन हो गया, है ना? और एक ही मोबाइल में सब कुछ आ गया, इंटरनेट है, फिर वो गूगल है, पता नहीं दुनिया भर की सारी चीजें। यहाँ बैठे बैठे किसी भी देश का हम टाइम टेबल देख सकते हैं ना? तो पहले हमारा छोटा सा मोबाइल होता है तो हम लोग सुबह एक दो घंटा चार्ज करते थे, सारा दिन चलता था। अभी क्या होता है, कितने बार चार्ज करना पड़ता है? दो बार कभी, और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि चार्जर ही साथ में लेके घूमना पड़ता है ना, घूमना पड़ता है ना, ताकि हम उसको यूज कर सकते। देखो समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई, तो अभी हमें भी बदलना है। ये तो रहा स्थूल वाला मोबाइल, लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो हमें मोबाइल दिया है, आपको पता है उसकी कीमत कितनी है? कितनी है? ये जो मोबाइल बाबा ने दिया है, शिव बाबा ने हमें मोबाइल दिया, इसकी कीमत पता है कितनी है? इसकी कीमत है 225 करोड़। कितनी? अमेरिका में इसका रिसर्च किया गया और उसमें देखा गया कि नाखून है, बाल है, आंख है, कान है, हर चीज की वैल्यू निकाली। अगर इसमें से कुछ चीज को पूछे, भाई एक आंख कोई दे सकता है? देगा कोई आंख? तो ये परमात्मा ने चलता फिरता जो हमें मोबाइल दिया है, पहले तो हम लोग पूजा पाठ करते थे, सुबह सुबह हो जाता था काम, आदमी चार्ज रहता था पूरा दिन। लेकिन अभी इस मोबाइल को हम कितना यूज करते हैं, कहाँ का दिमाग लगाते हैं? तो इस मोबाइल को हम कितने बार चार्ज करते हैं? जो बाबा ने जो हमें मोबाइल दिया है, इसको चार्ज करते हैं हम लोग? पहले तो अमृत वेला है ना, अमृत वेला चार्ज करते, फिर बाबा ने कहा बीच बीच में जो भी समय मिला, 2 मिनट 3 मिनट, ट्रैफिक कंट्रोल है, ये भी चार्ज। तो अगर प्रॉपर वे में अगर हम इसको चार्ज करते रहेंगे तो हमारी बैटरी फुल रहेगी, नहीं तो बैटरी नहीं होगी तो क्या हो? हमारा मोबाइल भले बहुत महंगा है, 10,000 20,000 25,000, लेकिन अगर वो बैटरी डाउन है उसकी, तो हम इसको यूज कर सकते क्या? एकदम खाली डब्बा जैसा काम, कोई काम का नहीं, कहीं फोन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमें 225 करोड़ का ये शरीर दिया है, इसको हम कैसे यूज कर सकते, हम इससे क्या फायदा लेते, इससे हम क्या करना चाहिए, बाबा के साथ कैसे हमारे संबंध रखने चाहिए? तो ये इस शरीर द्वारा ही परमात्मा के साथ हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और जब परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, तो अपने आप हमारे में वो पावर आना शुरू हो जाती है, शक्ति आनी शुरू हो जाती है। तो सब लोग चार्ज करेंगे ना, वैसे तो आप करते ही चार्ज, लेकिन जब चार्ज करेंगे तो अपने आप कुछ हमारे अंदर वैल्यू जाएगी, शक्ति आएगी, और वो शक्तियां है छोटी छोटी बातें होती कि हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, अपने आप को कैसे ठीक करें। मैं एक बार औरंगाबाद गया था और वापस आ रहा था, तो पानी की बोतल चाहिए थी, 10 रुपए में पानी की बोतल, तो मैं हमारे पर्स में पैसे ढूंढ रहा था, 10 रुपए खुले चाहिए ढूंढ रहा था। तो उसने, हमारा जो सामने एक भाई बैठा था, वो बड़ा ध्यान से देख रहा था ये 10 रुपए ढूंढने के लिए कितना टाइम लगा निकाल दिया इसने। फिर जब ये काम पूरा हो गया तो उसने मेरे से बात किया, और उसने अपना पर्स, देखो वो अज्ञानी था, उसने अपना पर्स दिखाया, तो उसमें मैंने देखा 1,000 की नोट, 500 की नोट, फिर 200 की, 100 की, 50 की, फिर 10 की, एकदम सीरियल वाइज रख। और उसने जो बात बताई मेरे एकदम मन में एकदम बैठ गई, बोला अगर हम दूसरों को वैल्यू देंगे तो वो हमें वैल्यू देंगे, अगर हम पैसे की वैल्यू करेंगे, पैसे को रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी आपका रिस्पेक्ट करेगा, अगर हम पैसे को भी सुव्यवस्थित रखेंगे, अच्छी तरह से रखेंगे, तो वो भी आपसे दूर जाना नहीं चाहेगा, आपके पास ही आना चाहेंगे, है ना। अगर किसी के पास हम मेहमान के रूप में जाते हैं, अगर उन्होंने अगर हमको बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत प्यार दिया, खिलाया पिलाया, तो कभी भी उस रास्ते से भी जाएंगे ना, तो बोलते चलो दो मिनट जाके आ जाते। और किसी मेहमान के पास हम जाते और उन्होंने हमको चाय भी नहीं पूछा, तो क्या जाएंगे दोबारा? अरे जाने दो, ये तो कुछ ध्यान ही रखते। तो इस प्रकार से बाबा ने तो हमें सारी चीजें सिखाई है कि चाहे जैसे मम्मा है, भले बोलते फटा पूरा ना है, लेकिन सिलाई करके उसको साफ सुथरा होना चाहिए। तो बाबा हमें योग सिखाते, योग करते, हम योग करते, योग पना क्या, ये योग्यता है हमारे जीवन में आनी चाहिए। छोटी छोटी जो योग्यता है, योग्यता है माना जैसे बोलते हैं ना 16 कला संपन्न, जो 16 कला संपन्न जो श्री कृष्ण का गायन है, उसमें क्या है कि कोई भी चीज कमी नहीं है, हर चीज व्यवस्थित। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी बहने भाई होते हैं, मोबाइल बजना शुरू होता है, मोबाइल बजना शुरू होता है तो मोबाइल ढूंढने में टाइम लग जाता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ रखा है, इस कप्पे में रखा है, उस कप्पे में, और ढूंढते ढूंढते टाइम, तब तक कितने लोगों के थॉट्स चलते हैं। जब ये थॉट्स चलते दूसरे के हमारे प्रति, तो हमारी बैटरी क्या होती, धीरे 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 डाउन होने लगती, क्योंकि हमारे कारण उनके थॉट चलने लगे। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है, जैसे देखो छोटी सी बात होती कि मोबाइल, हम कमरे से अंदर आते, हॉल के अंदर आते तो साइलेंस में करो, स्विच ऑफ करो, फिर बैठो। ऐसे ही हम एक बार हम मोबाइल देख रहे थे, मेरा एक दोस्त था, उसने देखा उसमें सारे क्रैचेस पड़े थे, बोलते क्यों, तो मैंने कहा यार ये चावी है ना, इसके कारण क्रैच पड़ते। तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई, बोले ये मोबाइल है ना, उसके एक जेब रख दो, एक ही जेब, उसमें सिर्फ मोबाइल ही, दूसरा कोई चीज नहीं रखना, दूसरी चीज में दूसरी चीजें रखो। तो सचमुच मैंने ये प्रयोग किया तो कभी भी उसको क्रैच नहीं पड़ा, खराब नहीं हुआ, क्यों कि उसको मैनेज किया हमने, व्यवस्थित रखना। और कभी सोचते देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से पता चलता है भाई हाँ मोबाइल है हमारा, कि गुम नहीं हुआ। तो देखो एक चीज अगर संभाल के रखते हैं, हम ध्यान रखते हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, नहीं तो कई बार हमारा मोबाइल ढूंढने में टाइम लगेगा। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं हमारे कमरे में एक टेबल होता है, तो हम लोग एक पर्ची, दो पर्ची, किसी का बिल होता है, किसी का कुछ होता है, ऐसे रख देते। अचानक किसी का फोन आता है, भाई वो फलाना बिल लेके आओ जल्दी, तो हम 50 कागज ढूंढते रहते, है ना। उसमें हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट हो गया, है ना। थॉट्स, हमारे थॉट्स सारे यहीं तो रखा था, यहीं तो रखा था, है ना। तो हर चीज को व्यवस्थित मैनेजमेंट रखना, यही हमारे मम्मा है, बाबा है, दादिया है, ये चीज इन्होंने सिखाया है। हमारी जो जानकी दादी है, वो टीचर बहनों को पता होगा, किसी भी सेंटर पे जाएगी ना, बोलो खोलो अलमारी, खोलो सारी अलमारी, खोल के बहनों के कपड़े कैसे रखते हैं, अलमारी कैसे रखते हैं, हर चीज कैसे, मतलब हर चीज का ध्यान, मतलब दादी को इसमें तो सभी को अलर्ट होते थे, नहीं हमें व्यवस्थित रहना है। कई बार हमारे पास ऐसी परिस्थिति आती है कि अचानक कहीं जाना होता है, अचानक कहीं जाना, तो और हमारी तैयारी नहीं होती, इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं, क्योंकि हमारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अचानक कहीं 2 दिन के लिए जाना हो तो हमारा एक बैग ऐसे तैयार होना चाहिए, जो बाबा बोलते हैं ना समेटने की शक्ति होना चाहिए, 1 सेकंड में तैयार। हाँ, जैसे कि युद्ध के मैदान में जो सैनिक जाते, वो ये नहीं सोचते कि भाई मेरे बंदूक को उसमें वो कुछ डालना है, गोली डालना है, जैसे ऑर्डर मिला एकदम तैयार हो जाते। तो अभी भी हमारी जो परिस्थितियां ऐसी हुई है, कल क्या होगा पता नहीं है, तो हमें अपने आप को ऐसे तैयार रखना है कि कभी भी हम कुछ भी, जैसे ऑर्डर आया, जैसे बाबा का बुलावा है, हम रेडी। ऐसे नहीं कि वो मुझे करना था, ये मुझे करना था, ये चीजें नहीं। तो इसलिए अगर अपने आप को मैनेज करना सीखेंगे, अपने आप को मैनेज करना, ये छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की जाती है ना। अब छोटी छोटी चीजें शुरुआत करेंगे तो आपको ये इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर जब आप जब योग में बैठेंगे, आप योग में बैठेंगे तो भी उसको आप मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे आपका 4 से 4:45 योग है, ठीक है, तो योग सुबह है लेकिन रात को ही हम सोचा कि मुझे 10 मिनट इसका अभ्यास करना है, अशरीर का अभ्यास करना है, 10 मिनट बाबा के साथ रोहरियान करना है, 10 मिनट फरिश्तापन का अनुभव करना है, तो आप रात को ही सेट करो इसको। और जैसे ही उठे, मुंह भी धुलाई करके, बाबा को गुड मॉर्निंग करके, जब भी आप जहां भी आप योग में बैठते तो ये स्टेज का, ये स्थितियों का अभ्यास करो। अब जब आप योग में भी मैनेज करना सीखेंगे, क्योंकि भाई आप इतना दूर से आए, इतना दूर से आए भट्टी करने के लिए, और भट्टी का हमें मैनेज, जैसे यहां देखो टाइम टेबल दी जाता है ना, भाई 10 से 11 ये, 11 से 12 ये, फलाना इस प्रकार पूरा आपको, उस प्रकार अगर आप अटेंशन से क्लासेस अटेंड करेंगे, ध्यान जो योग है वो अटेंड करेंगे, तो आपका जो भट्टी का पूरा पूरा वसूली, मतलब पूरा पूरा फायदा आपको मिलेगा। और जब आप इस बातों को ध्यान, मतलब अटेंशन से करेंगे, क्योंकि आप सोचो कि हम मधुबन आने के लिए कितने बार सोचा होगा, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, फिर टिकट बनाया, फिर इधर आए, फिर यहां आने के बाद अगर हम इधर उधर घूमते रहेंगे इधर उधर, तो उसका फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आप इतना समय निकाल के घर बार सब दूसरे उसका मैनेज करके फिर आप यहां आए हैं। तो ये मैनेज करने का जब संस्कार आपके अंदर आएगा, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसको आप मैनेज कर सकते। चाहे कोई आपको भट्टी रखना है, चाहे कोई प्रोग्राम रखना है, चाहे कोई बड़ी से बड़ी कुछ मेगा प्रोग्राम जैसे चीज कोई भी हो मैनेज। अभी हम देखा कि हमारी जो बहने हैं भट्टियां रखती है ना वहां, तो आप लोगों को कितना मतलब मेहनत करनी पड़ती, कितना मतलब मैनेज करना पड़ता है। अभी यहां देखो हम आए, वो माइक वाले आए माइक रख दिया, लाइट वाले लाइट चालू कर दिया, वो स्टेज वाले अपना वो पंखा चालू किया, पानी रख दिया। देखो यहां कुछ किसी को बताया नहीं, भाई ये रोको वो रोको वो रोको, कुछ नहीं, सब अपने आप बाबा के घर में मैनेज करके रखा है, सब अपने आप सब करते, किसी को बताने की जरूरत नहीं। जैसे क्लास पूरा हो जाएगा लाल लाइट आए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाल लाइट जलाओ भाई, लाल लाइट जलाओ, नहीं। तो ये बाबा के घर में, और यही चीजें जब आप लोग करते हैं, मुझे याद है जब हमारे रमेश भाई, जो बड़े रमेश भाई शाह, एक बार वो बड़ा फंक्शन था तो उसमें लास्ट का प्रोग्राम पूरा हो गया, लास्ट का प्रोग्राम पूरा हो गया तो उन्होंने मतलब गीत बजता है, तो गीत वाले ने ना भंगड़ा का गीत बजा दिया, तो रमेश भाई बोलते हैं अरे योग का गीत होता है लास्ट में, तो भंगड़े का गीत कहाँ बजा। मतलब देखो उनको तो पता ही नहीं होता ना, लेकिन यहाँ हमारे मधुबन में बाबा के घर में उनको कुछ भी बताने की जरूरत, सब अपने आप, कौन सा समय क्या आएगा, कौन सा, जैसे जानकी दादी आती थी तो वो जानकी दादी का गीत बजाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ इतना मैनेज है, और इसलिए आप लोग इस धरती पे आए, इस पावन धरती पे आए, तो आपको पूरा पूरा उसका फायदा उठाना है। कि हर चीज आपको, कोई ये टेंशन नहीं कि आपको भोजन बनाने जाना है, आपको वो कुछ करना है, नहीं। तो इसलिए बाबा ने आपको बुलाया है यहाँ, इतना अच्छी तरह से वातावरण है, इतना प्यार सबका मिलता है। तो जब हम इन चीजों को मैनेज करना सीखते हैं, तो कोई हमारे बहुत कोई बड़ी परिस्थिति भी आती है तो भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूँ। मुझे 2008 में कैंसर हुआ था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा या टीवी में भी देखा होगा। तो जब यहाँ हमारे पास रामदेव बाबा आए थे ज्ञान सरोवर, तो उन्होंने हम लोग सुबह सुबह, हमारी जानकी दादी जी मेडिटेशन कराया, 4:45 बजे योग पूरा हुआ, उसके बाद रामदेव बाबा ऐसे नीचे बैठे थे, वो आए। उन्होंने कहा रामदेव बाबा हो और योगा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो सब खड़े हो जाओ। और वो 2-4 एक्सरसाइज और 2-4 प्राणायाम सभी ज्ञान सरोवर निवासियों को सिखा दिया। और उन्होंने कहा रोज इतना करो, बस आपको कोई जरूरत नहीं, इतना यहाँ अच्छा व्यवस्था है, सब कुछ है, वातावरण है। तो मैंने करीब करीब कंटिन्यू 2 मास वो प्राणायाम कर रहा था। 2 मास के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ है करके, ऐसे गांठ ऐसे नजर आ रही थी, मतलब हाथ को लग रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर तो डर गया, उसने बोला ये सोनोग्राफी करो इसकी। सोनोग्राफी किया तो बोला नहीं ये कुछ गांठ है, आप बड़े डॉक्टर को दिखाओ। दूसरे दिन हमारे पास डॉक्टर मेहता जी आए थे, तो मैं ग्लोबल हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा चल लेट जाओ इधर, चेक किया तो उनको डाउट आया, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो मुंबई चलो, वहां हम चेकअप करेंगे आपकी। जब उसकी बायोप्सी किया और हम बायोप्सी करके उसका रिपोर्ट लेके हम जा रहे थे ऊपर, हमारा BHS हॉस्पिटल है वहां, तो हमारे साथ एक भाई था, तो मैंने उसको रिपोर्ट दिखाया। तो उसने देखा, क्योंकि मेडिकल लाइन का था, उसने रिपोर्ट देखा, उसने कहा ये रिपोर्ट तो पॉजिटिव है आपका। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, अरे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें तो पॉजिटिव की बातें सिखाई है, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो उसने मुझे समझाया, अरे पॉजिटिव बना आपको कैंसर है ऐसा, तो मैं एक तो एकदम जैसे नहीं आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने कहा हम बचपन से बाबा की सेवा में, सब कुछ यहाँ है। तो एकदम 30 सेकंड जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गए। फिर मैंने अंदर ही अंदर बाबा से बात किया, मैंने कहा बाबा यह शरीर आपका है, मैं भी आपका हूं, ठीक है, और यहां मेरे 25 साल सेवा में तो हो गए, तो मैं तो तैयार हूं आपके साथ आने के लिए, क्या मैं तो तैयार हूं आपके साथ आने के लिए, जो कुछ करना है वो आपको करना है, अगर अपने साथ लेके चलना है मैं तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, अगर आपको यहां रखना है तो ढंग से रखना ताकि मैं सेवा कर सकूं। बस इतना बाबा को बोला और कमरे में जाके आराम से सो गया, वो रिलैक्स हो गया, कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरे दिन से कीमोथेरेपी शुरू हो गई। अब पहले कीमोथेरेपी सलाइन जैसा होता है, लगाया फिर कुछ दिन के बाद दूसरा लगाया, तो कुछ हुआ ही नहीं, बने यार कुछ नहीं, लोग डरते ऐसे फालतू में हा? जब तीसरी कीमोथेरेपी हुई तो देखा ऐसे बाल खुजलाने, बाल ऐसे खींच दे तो बाल ही हाथ में आ गए सारे, मैंने कहा अभी इसका असर शुरू हो गया। लेकिन मैंने एक संकल्प किया कि ये मेरा हिसाब किताब है तो मुझे चुप्त करना है। तो मेरे साथ जो मेरे बहन का लड़का था उसको बोला किसी को बताने की जरूरत नहीं, तो क्योंकि धीरे धीरे पता तो चल जाएगा, लेकिन अभी हमें कुछ बताना नहीं, हम बिल्कुल ठीक हो ऐसा करके। तो करीब 2 मास निकल गए। 2 मास के बाद परिवार वालों को पता चला, जब उनके फोन आने लगे तो वो तो रोना शुरू, आप बीमार है, आपने बताया नहीं हमको ऐसे ऐसे। तो मैं उनको बोला कि किसने बोला मैं बीमार हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं हमको पता चला। मैंने क्या पता चला, नहीं आप बीमार हैं। मैंने कहा मैं कहां बीमार हूं, मैं तो एकदम अच्छी तरह से उनको चुटकुले सुनाता था, हंसाता था, वो तो एकदम कंफ्यूज हो गए, यार क्या है सचमुच है नहीं। तो क्या हुआ, वो जो मैसेज मैंने भेज दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो उन्होंने जो भी हमारे दूसरे परिवार है वो दूसरे परिवार सब फैल गई बात, नहीं यार उसको कुछ नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल हमने फोन पे बात किया, बिल्कुल अच्छा है वो। तो बोलते नहीं आपको मिलने आना है, मैंने कहा मैं आऊंगा ना आपको मिलने के लिए। तो क्या हुआ, वातावरण में क्या हो गया, जो निगेटिव वातावरण बन रहा था वो पॉजिटिव वातावरण बन गया, नहीं बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसको। दूसरी चीज मैंने किया कि मैं कई बार सोचता था कि मुझे कुछ मेरी कुछ पेंडिंग काम है, जैसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा, तो मैंने पूरा लिस्ट बनाया जो जो मुझे पेंडिंग काम थे। तो एक काम था कि जगदीश भाई जी का लिटरेचर था वो पढ़ना था, जो बाबा की अव्यक्तवाणी है वो पढ़नी थी, फिर कुछ किताबें, मतलब ऐसा जो भी मेरा था, कुछ योग अभ्यास करने थे। हमारे जगदीश भाई जी ने हमें सिखाया था कि कैसे ड्रिल करना, यहाँ से परमधाम, परमधाम से यहाँ नीचे, ऐसे। तो जितने भी काम थे वो मैंने लिस्ट बना दिया, धीरे 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 करना शुरू किया। और मैंने ये सोचा कि देखो ये हिसाब किताब मेरा है, वो एक तो रोते रोते पूरा करना है या तो हंसते हंसते पूरा करना है, तो क्यों ना इसको हंसते हंसते पूरा करना है खुशी से। क्योंकि हमने इतने सालों से मेडिटेशन किया, हम दूसरों को तो समझाते हैं कि ये मेडिटेशन से हम ये करते हम वो करते, अब प्रैक्टिकल तुम्हें करना है। तो सचमुच बाबा की भी मदद कैसे मिलती है, तो 2-2.5 मास के बाद मुंबई से जब मैं यहाँ आया तो मैं जानकी दादी से मिलने गया, तो जानकी दादी मेरा हाथ पकड़ा और गुलजार दादी के पास लेके गई और गुलजार दादी को बोला, दादी जी देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया। गुलजार दादी के पास जाके तो गुलजार दादी तो एकदम लाइटली, कुछ नहीं ये तो छोटा सा पेपर है ना, पास कर देगा। तो ये मेरे को पहला वरदान मिल गया दादी के थ्रू, जैसे बाबा ने, कुछ नहीं छोटी सी बात है ना, पास कर देगा। सचमुच वो उसे एक पावर मिल गई, हमें शक्ति मिल गई। फिर हमारा ये जो कीमोथेरेपी का जो होता है वो चलता रहा। हॉस्पिटल में भी मैंने देखा कि कैसे सेवा होती है, कि जो डॉक्टर्स आते हैं, तो मैं तो मुरली बिरली पढ़ के आराम से बैठता था अपने खटिया पे, तो वो कभी कभी नए डॉक्टर आते ना तो वो एकदम नर्स को डांटते थे, तुमको इतना समझ नहीं, हो पेशेंट की जगह थोड़ी, ये तो यहाँ कौन बैठा है, ये तो पेशेंट कहाँ गए यहाँ का। तो वो नर्स बोलती यही पेशेंट है डॉक्टर साहब, तो उसको एकदम हैरान होता है। फिर वो दूसरे लोगों के पास जाता था ना तो बोलता है देखो फलाने नंबर में वो कैंसर पेशेंट है, कैसे रहता है, कितना खुश रहता है, मतलब खुशी से, कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हुआ है किसी को। और कभी हम अपना रोना, कभी ऐसा नहीं कि दर्द नहीं होता है, होता है, लेकिन दूसरों को बताने से कम तो नहीं होता है ना, हा? औरों को बताने से वो दूसरों को बताते बढ़ाते रहते हो, तो इसलिए बहुत अच्छा। इसलिए हमें ये सीखना है, कभी भी किसी भी पेशेंट के पास हमें जाओ तो हमें पुरानी बातें कुछ नहीं करना है, हमें उनके हिम्मत दिलाना है, हौसला दिलाना है। नहीं तो कई लोग क्या बोलते, अरे बाप रे ये कैंसर है ना, हमारे पड़ोस में जो हुआ था ना वो 15 दिन में ही चला गया। अब बेचारा वो पेशेंट बोलता है अभी मेरे भी 2-4 दिन बाकी होंगे, है ना। तो मुझे याद है जब जो शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े महापुरुष होके गए, तो उनके वाइफ को है ना ऐसी बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो उस समय तो वैद्य होते हैं, उनके पास वैद्य आए, वैद्य ने देखा तो उन्होंने कहा ये जो है वो 2 मास की मेहमान है करके ऐसे, तो तुरंत शिवाजी महाराज ने चुप बोलो, फिर उसको बाजू में लेके गए और उनको बोला कि ऐसा नहीं बोलना होता है, मतलब जो सच है बोल दिया मैंने, बोला नहीं अभी आपको क्या बोलना है, अरे ऐसी ये तो बीमारी कुछ भी नहीं, ऐसी तो बीमारी मैं कितनी ठीक कर दिया है, ये कुछ भी नहीं, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो 2 मास के अंदर ठीक हो जाएगी ऐसे बस। फिर जब सामने बात हुई उन्होंने बोला तो उसके अंदर एकदम हिम्मत आई, 2 मास में ठीक होने वाला है, तो चलना फिरना घूमना सब काम करना शुरू कर दिया उसके वाइफ ने। फिर शिवाजी महाराज भी उनके साथ थोड़ा पालना देने लगे क्योंकि उनको पता है 2 मास की मेहमान आए करके। तो जब लास्ट सेकंड में उनको खून की उल्टी हुई और शरीर छोड़ा, लेकिन 2 मास वो बहुत खुशी से जिए, मतलब 2 मास तक वो कभी सोचा भी नहीं मेरा कुछ होने वाला है करके। तो कहने का भाव है कि हमें किसी भी पेशेंट को हौसला बढ़ाना है, हिम्मत बढ़ाना है, और भले प्यार से उसको मिलो जुलो, लेकिन निगेटिव बातें उसके सामने नहीं करना है ना। तो ये कई चीजें मुझे सीखने को मिली। ऐसे ही जब मैंने देखा कि जब मैं वहां मुंबई के हॉस्पिटल में था, एक बार गुलजार दादी वहां आए थे, एक कोई ऑफिस था उसका उद्घाटन, वो पार्ला में थे, उद्घाटन करने के लिए आए थे उधर। तो क्या हुआ, वो उद्घाटन करके चले गए दूसरे सेंटर, नेपेंसी रोड सेंटर पे गए। अब वहां जाने के बाद वहां हमारे ज्ञान स्वरूप का भाई मिला, तो दादी को पूछा उन्होंने, दादी सुभाष कैसे है तबीयत उसकी? तो उन्होंने कहा है वो, तो बोला दादी आप जहां थे वहीं था, हॉस्पिटल में था। तो दादी जी ने बोला अच्छा उसको फोन लगाओ। तो वो भाई ने फोन लगा के दिया दादी जी को, और दादी जी ने जो वाक्य जो बोला वो मैं तो एकदम हैरान हो गया। इतनी बड़ी विभूति, इतनी महान हस्ती होने के बावजूद उनके अंदर निर्ममता कितनी है। तो दादी मुझे फोन पे बोलती, देखो ना मेरे से एक भूल हो गई। मैंने कहा दादी आपको पता नहीं था ना, तो इसलिए आप नहीं मिल पाए। नहीं, भूल तो भूल होती है ना, मैं हॉस्पिटल में आया और आपको मिली नहीं। फिर दादी जी ने दूसरा वरदान दिया कि जल्दी जल्दी ठीक होके मैदान में आ जाओ, ये दूसरा वरदान था मेरे को। तो ये भी एक बड़ों का जो प्यार और जो शक्ति वो अपने आप। तो मैं सोचा अगर मैं जिंदा रहूंगा तो भी सेवा करूंगा ना। तो ये दादी ने जैसे दूसरा जैसे बाबा के तरफ से वरदान दिया। तो इस प्रकार से कैसे बाबा अपने बच्चों को कैसे प्यार देता है, कैसे स्नेह देता है, और बीच बीच में कैसे उमंग उत्साह खुशियां कैसे देता है, वो हमने प्रैक्टिकल देखा। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई, जब ये बीमारी का दौर चल रहा था तो हमारी बड़ा परिवार है, तो क्या होता है कोई ना कोई सेवा में आता था। तो एक बहन की और भाई की लड़की आई, बोलते चलो एक दो मास सेवा करेंगे, बाद में भले शादी करेंगे जाके। तो आ गए ज्ञान सरोवर, हमारा तो 15-20 मिनट का काम होता, फीका भोजन होता था ऐसे। फिर वो करके वो आर्ट गैलरी में चले जाते थे, आर्ट गैलरी समझाते थे और बीच बीच में सेवा करते थे। तो एक मास हो गया, दो मास हो गया, तीन मास हो गया। तीन मास के बाद मैंने कहा कि देखो कन्याओं की बट्टी है उसमें जाओगे? तो बोला हाँ हम जाएंगे। तो फिर वो कन्याओं की बट्टी में बैठ गए, कन्याओं की बट्टी होगी उसके बाद वो बहन, हमारे टीचर लोगों को पता चल जाता है, तो उन्होंने पूछा भाई इनको सेंटर पे भेजोगे? मैंने कहा उनको पूछो, वो लोग तैयार हो गए। तो उसमें से एक पार्ला सेंटर गई और एक बोरोली सेंटर चली गई, तो उनका कल्याण हो गया। उसके बाद और दो आ गई, उनका भी इसी प्रकार से। तो आ गए, दो तीन मास रही, वो भी भट्टी आदि करके वो भी बाबा के सेंटर पे। तो चार तो ब्रह्मा कुमारी बन गई ये बीमारी। तो कई बार मैं सोचता हूँ बाबा ये बीमारी थोड़ी आपने जैसे गिफ्ट दिया है। और दूसरा मैंने देखा कि इतने अच्छे अच्छे अनुभव बाबा कराता है। मुझे याद है मैं जब कमरे में बैठा था हमारे, और उसी समय अपना डायमंड हॉल है ना, उसमें बाबा का प्रोग्राम था और करीब करीब 25,000 लोग आए थे। मैं कमरे में बैठा हूं और वो FM रेडियो में वो बाबा का जो ना गीत आदि सब आ रहा है, तो कमरे में ट्रांसलेट था बाबा का। फिर जैसे बाबा की मुरली शुरू होने वाली है और बाबा के ट्रांसलेट को मैं देख रहा हूं, और बाबा को मैंने कहा बाबा आप 25,000 लोगों को मुरली सुनाओगे और मैं यहां अकेला बैठा हूं, और मेरे आंखों से सब पानी आने लगा, इतना पानी आने लगा। तो मैं अनुभव किया कि वो ट्रांसलेट से बाबा धीरे 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 मेरे तरफ आते हैं, यहां बैठते हैं मेरे बाजू में, और पूरी मुरली जैसे अनुभव कराया बाबा ने कि बाबा मुझे डायरेक्ट मुरली सुना रहा है। तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव कि बाबा ने, बाबा को यहां आना पड़ा, बाबा ने मुरली डायरेक्ट सुनी सुनाई मुझे। और जब मैं वहां से उठ के हमारे डाइनिंग में चला गया और वहां चल के सब लोग बोल रहे, अरे तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, यहाँ क्यों आए। लेकिन मुझे तो इतना नशा चढ़ा हुआ था, बाबा ने मुझे मुरली सुनाया, अभी किसको बोल भी कैसे, क्या बोलूं मैं। लेकिन इतना ताकत, इतना शक्ति कि जो मैं उठ भी नहीं सकता था। तो और मैं जाके 3-4 सीढ़ियां उतर के एक डायनी में घूम रहा हूँ। तो ये मेरे को बाबा ने इतना बड़ा अनुभव कराया, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये कीमोथेरापी चलते गए, फिर एक साइकिल हो गया, फिर दो साइकिल हो गया। जब मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव का निगेटिव आया तो मैंने पहले फोन गुलजार दादी जी को किया, दादी ने बहुत बधाई दी, फिर निर्वय भाई को किया। तो कैसे मतलब खुशी होती है, आनंद होता है कि इन लोगों के कारण, बाबा की ब्लेसिंग के कारण, कैसे बाबा जैसे नहीं बहुत। और इसमें मुझे देखा, मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे याद है जब ये जो अनुभव था तो हमारे पास शिवानी बहन और सुरेश अबराय वहां खाने पे आए थे, तो मैं उनको सुना रहा था कि ये अनुभव हुआ फलाना। तो शिवानी बहन ने कहा, देखो अभी हमें मत सुनाओ, इसको लिखो और इसको ज्ञानामृत में डालो। तो मुझे अंदर अंदर हंसी आई कि ये क्या बीमारी कोई लिखने की चीज है क्या। लेकिन चलो, इतनी बड़ी बहन है, उसने सुना बताया, तो मैं धीरे 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 लिखना शुरू किया। क्योंकि मुझे शुरू से थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत थी, कुछ कुछ हुआ था वो ऐसे लिखा, और फिर एक भाई को दिया, भाई इसको ठीक करो। और जब वो ज्ञानामृत में भेजा उनको, तो ज्ञान अमृत वालों ने तुरंत उसका ट्रांसलेशन किया और वर्ड रिन्यूअल इंग्लिश हो गया, उसका इंग्लिश भी हो गया। फिर जैसे जैसे बाहर गया तो किसी ने गुजराती में, मराठी में, तमिल में, बहुत भाषा में उसका ट्रांसलेशन हो गया। और जब मैं एकदम ठीक ठाक हो गया, उसके बाद सबको पता चल गया, अरे ये बीमार था, अरे ये बीमार था। और बाबा का सीजन चल रहा था, जो आए मिलने तो कमरे में जाने का टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि उनको किसी को पता नहीं था। और अभी सबको पता चल गया ये था, लेकिन अभी ठीक हो गया करके। तो ये कभी कभी मैं बाबा को बोलता हूँ, बाबा ये आपने बीमारी थोड़ी, ये तो मुझे आपने गिफ्ट दिया। अब ये गिफ्ट के कारण सारी दुनिया में मुझे फेमस कर दिया। फिर वो हमारे ई टीवी वाले आए, इंटरव्यू लिया कि भाई आपका कैसे, तो 13 एपिसोड वो हो गए, फिर पीस ऑफ माइंड में हो गया। तो अलग अलग ठिकान पे ये सबको पता कि कैसे कैंसर पे कैसे जीत पाया। तो इस प्रकार से बाबा ने, बाबा की जो दी हुई चीज या कहो जो भी हमारे पास जो समस्या है, तो मैंने कभी बाबा के ऊपर ब्लेम नहीं किया। अरे बाबा, मैं आपको इतना अच्छा बच्चा हूँ, मैं इतनी अच्छी सेवा करता हूँ, तू मेरे को ही कैसे किया, मेरे को भी ऐसा क्यों हुआ। बाबा के ऊपर कभी ब्लेम नहीं किया। जो है मेरा हिसाब किताब है, उसको मुझे चुक्त करना है, सरलता से करना है। तो ये चीजें मैंने सीखी। और उसी पीरियड में मैंने देखा, मुझे लिखने का जो अनुभव, लिखने की कला है, धीरे धीरे डेवलप होती गई। तो जैसे बेंजी ने बोला ना कि जैसे प्रकाशमणि दादी के साथ हमें बहुत समय हमको रहने को मिला, 1983 से लेके 2007 तक, फिर जानकी दादी, और क्या हुआ, ज्ञान सरोवर बना था। तो ज्ञान सरोवर बना तो सबका ध्यान ज्ञान सरोवर के तरफ, क्योंकि लाडला बच्चा बन गया था, पहला रिट्रीट सेंटर बन गया था। तो हमारी सारी दादियां वहां आती थी, हमारे सारे बड़े भाई वहां आते थे। तो हमें तो एक सिंपल भोजन खिलाने की ड्यूटी है, हम भोजन खिलाने वाले। तो क्या होता था, पहले तो हम शुरू शुरू में लगता क्या भोजन ही खिलाना है क्या, ऐसा लगता था। लेकिन देखा कि दादी ने एक बार कहा कि बाबा ने आपको निमित्त बनाए, बाबा ने आपके सेवा दिए, कोई साधारण बात नहीं। तो उसी को फिर हमने कभी मुड़ के नहीं देखा, नहीं, जो बाबा ने सेवा दी वो दिल से करना है। फिर मैंने अनुभव किया कि जैसे ज्ञान स्वरूप शुरू हो गया, तो हम जैसे गुलजार दादी आके वहां रहती थी तो उनको खाना खिलाना, फिर जानकी दादी विदेशियों के कारण वहां आती थी उनको खाना खिलाना, प्रकाशमणि दादी आती थी उनके साथ। तो ऐसे जगदीश भाई जी, निर्वय भाई, हमारे सारे जो सीनियर भाई सब आते थे। और दूसरा हमने देखा जो हमारे जितने भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में जितने भी बड़े वीआईपी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर, सीएम, जो भी हो, ज्ञान सरोवर में आते, प्रोग्राम करते, फिर उनको भोजन आदि खिलाना, तो हम लोग भोजन कराते कराते उनको बाबा का ज्ञान सुनाते। और कई बार मैंने अनुभव किया कि जो हम भोजन के, क्योंकि उनको इतना पता नहीं होता, तो भोजन खिलाते खिलाते हमारा बहुत एकदम रिलेशन अच्छा हो जाता है, तो वो पूछते हैं कि भाई ऐसा है, ये कैसे, वो कैसे, तो वो जाके फिर वही बातें अपने स्पीच में बोलते। मुझे याद है एक बार हमारे पास एक बहुत बड़े रूपाणी करके बहुत बड़े इंडस्ट्रीज आए थे, तो आए थे तो उन्होंने कहा मुझे फीका चाय मिल सकता है क्या, डाइनिंग में आया, हमको हमको क्या पता है कौन आए ये करके, तो उन्होंने सिर्फ कहा फीका फीका चाय चाहिए था थोड़ा। मैंने कहा ठीक है, दो मिनट में मैंने जाके वहां गैस पे उनको चाय बना के देके मैं चला गया। चला गया तो बोला पता नहीं वो कहाँ गया भाई करके। फिर बाद में देखा तो वो स्टेज पे चीफ गेस्ट थे, वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने वहां अनुभव में सुनाया कि देखो यहाँ कोई बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने ये अनुभव किया, बोला अभी थोड़ी समय पहले की बात है, मैं डाइनिंग में गया और वहां एक भाई को मैं पहचानता भी नहीं उसको, उसको बोला हमको फीकी चाय चाहिए, तो उसने मुझे बना के दिया और चला भी गया, मैं थैंक यू भी नहीं दे पाया उसको। तो ये कहाँ होता है, दुनिया में हम जाते हैं तो लोग पैसे के लिए कितना पीछे पड़ते, इतने का इतना पैसा ये हो, और हमें उसको परिचय भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमको चाय भी बना के दिया और चला भी गया। तो यहाँ कोई तो शक्ति है जो काम कर रही है। तो इस प्रकार ये बाबा हम बच्चों से कैसी कैसी सेवा कराता है, वो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया कि अगर हम सच्चे दिल से बाबा के प्रति, बाबा के स्नेह, बाबा को प्यार करते, तो बाबा अपने आप कोई भी साधारण बच्चों से भी सेवा कर सकते। जैसे हमारे गुप्ता करके डॉग बहुत बड़े जज थे, तो आपस में डिस्कस चल रहा था पवित्रता के ऊपर, पवित्रता के, वो जज थे, दूसरे कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज वकील थे, ऐसे घर में बैठे बैठे बात चल रही थी, और वो पवित्रता इतना मतलब झगड़े जैसी बात चल रही, ऐसा नहीं हो सकता, बोला योग क्यों नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे ऐसे। तो घर में उनकी छोटी सी बच्ची थी, तो वो गई और उनके गोद में बैठ गई, जो जज साहब के गोद में बैठी, और बोलता अंकल ये क्यों झगड़ा करे, जब मैं पवित्र रह सकती हूँ तो आप नहीं पवित्र रह सकते। देखो वो उसके मुख से बाबा ने कैसे निकलवा दिया, तो बोलता कि मैं इतनी छोटी हो कि पवित्र रह सकती हूँ, आप नहीं रह सकते, आप तो कितने बड़े हो। बस वो बात उनको ऐसी टच हो गई, उसके बाद वो बाबा के बच्चे बन गए। तो देखो कैसे बाबा टच कराना हो, तो भोली भोली माता भी छोटी कुछ भी ऐसे लोगों से बाबा इसे मुख से निकलवा देता है और उसको बाबा का ज्ञान में। मुझे याद है एक बहुत बड़े व्यापारी आए थे, कारखानदार थे, ज्ञान सरोवर में आए और हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, आराम से छत पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। हमने तो बहुत खुशी हुई थी, चलो ठीक है, मतलब बहने कितने अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, कितना अच्छा लेक्चर होता है ऐसे। फिर बोला लेकिन आप शादी क्यों नहीं करते। मैंने कहा कहां के बाद कहां जोड़ दिया, मैं तो एकदम शांत हो गया दो मिनट एक मिनट के लिए। तो पहले तो कहा कि है ना हमको टाइम नहीं मिलता है। अरे टाइम नहीं मिलता है शादी के लिए, टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा बाबा इसको अभी क्या जवाब दो। तो मैंने पूछा आप क्या करते। उन्होंने कहा देखो मेरी दो फैक्ट्री है और उसमें करीब करीब 1000 लोग काम करते हैं, उनको मैं कितनी सेवा देता हूँ, ये करता हूँ, उनका जीवन कितना। तो मैंने कहा ठीक है हम भी शादी करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलो बोलो जो बोलो वो करेंगे। बोला कि आप कल से ना एक पान पट्टी का दुकान खोल दिया ना, हाँ, पान पट्टी का दुकान बोला, बोला मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो इतने लोगों की सेवा में इतना करता हूं ऐसा। मैंने कहा देखो मैं यहाँ हेडक्वार्टर में बैठा हूं और यहाँ हजारों क्या लाखों लोग आते, देश विदेश के 150 कंट्री के लोग आते, उसकी सेवा मैं कर रहा हूं और आप बोलते कि एक की सेवा में लग जाओ, है ना, शादी करके एक की सेवा लग, हा? तो मेरा तो आप नुकसान कर रहे हो ना। मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप तो मेरा नुकसान करें, और आपका नुकसान होता है तो आपको तकलीफ होती है ना। तो वो बात इसको इतनी अच्छी लगी, उसके बाद वो चला गया, बीके बन बाबा का बच्चा बन गया सब, हम तो भूल गए। उसके बाद 2 साल के बाद आया एक दूसरे बिजनेसमैन को लेके, दूसरा बोलते जो बात मुझे बताए ना इसको भी बता दो। हमने मैंने क्या बताया था उस समय, जो बताया जो हुआ सो हो गया। बोला नहीं, जो आपने बोला क्या बताया उससे पूछा, आपने ये बताया था। तो देखो बाबा अपना काम कैसे करता है, इसलिए कभी भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। हम लोग ना मैंने सेंटर बना के दिया, मैंने ये चीज किया, मैंने वो किया, मैं सेंटर पे फलाने चीज दी, नहीं, वो बाबा आपके थ्रू कुछ ना कुछ कराता है ताकि आपका भाग्य बन जाए। हम अपना भाग्य बनाने के लिए, हम आपका भाग्य बनाते, तो ये बाबा की कमाल है। तो मैंने देखा कि बाबा कैसे बीमारी को भी बाबा ने कैसे परिवर्तन करके फायदे में डाल दिया हमको। और पहले तो इतना सारा, क्योंकि ज्ञान सभा में उस समय एक ही साल में 13-13 कॉन्फ्रेंस होती थी, एक साल में नहीं, 2-4 मास में ही, क्योंकि नया नया ज्ञान सरोवर शुरू हो गया तो कितने वीआईपी, कितना मिनिस्टर, कितना सीएम, कितना गवर्नर सब आते रहते थे। लेकिन बाबा की सेवा करते 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 जो मैंने माइंड में रखा था कि मुझे ये अभ्यास करना है, ये करना है, लेकिन जब समय आया, बाबा ने मुझे समय भी दिया, उसके अभ्यास भी किया, और किस प्रकार अपने बच्चों को बाबा ने सारे दुनिया में, जैसे बेंजी ने बताया ना कि यूरोप भी गए, फिर अमेरिका, 2017 में जब अमेरिका गए थे तो हम देखा जहां भी हम बैठते हैं, जहां भी ज्ञान सुनाना शुरू करते, कोई ना कोई बीच में उठते बोलते है देखो आप ये नहीं सुनाओ, आपका कैंसर वाला अनुभव हमको सुनाना, तो बस हम वही सुनाते, वो तो हमको याद ही है सारा। तो क्या हुआ, जब मैं अमेरिका से फिर वैंकूवर गया था कनाडा में, जब मैं अनुभव सुना रहा था, तो मुझे एक वो बीच अनुभव सुनाने के बाद एक माता खड़ी हो गई, रोते 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 रोते, और बोलती पता है आपको किसने बुलाया। मैंने कहा किसने बुलाया, बोला मैंने बुलाया आपको। मैंने कहा कैसे, बोला मैंने आपको पीस ऑफ माइंड में सुना था ये जो अनुभव, और तब से रोज बाबा को अमृत वेला बोलती हूँ, बाबा ये भाई से मुझे मिलना है, ये भाई से मुझे मिलना है। आज बाबा ने देखो आपको हमारे सामने खड़ा कर दिया, सामने बिठाया। तो ये भी बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी शक्ति होती है माताओं के, जो ना बोलते ना हमारे महाराष्ट्र में भी है कि वो जो कृष्णा भी उसको मदद करने, वो जो आटा पीसने के लिए, आटा चक्की खींचने के लिए वो कृष्ण भी आता था। तो बाबा हर कदम हर समय हमारे साथ होता है, सिर्फ उसको बुलाने की जरूरत होती है, याद करने की जरूरत है। हाँ, कि ऐसा नहीं कि हम वो हमारा पूरा ध्यान रख रहा है, कहाँ है, कैसे है, क्या है, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है उसके साथ हमें कैसे जोड़ना है, कैसे करना है। तो मुझे याद है इस समय जब हम बीमारी के समय जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छा अनुभव हमको सुनाया था और कराया भी था, तो हमने कहा कि चलो अब ये समय मिला है। तो एक तो ड्रिल करते थे यहां से लेटे लेटे, क्योंकि उठ भी नहीं सकते, तो लेटे लेटे यहां से आत्मा धीरे 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 निकल के परम धाम जा रहे, बाबा से टच करे, टच करके धीरे 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 फिर यहाँ के बैठ रहे। ऐसे में हजारों बार ये अनुभव करता था, क्योंकि कई बार हमने देखा कि जब बहुत वीकनेस हो जाता है, उठ भी नहीं सकते, वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, वहां तक जाने के लिए भी शक्ति नहीं होती, तो कई बार मैं ना ऐसे लेट जाता था और अंदर अंदर साइलेंस में चला जाता था, बाबा के साथ बातें करता था और रोरियान करता था, और यहां से धीरे धीरे देखता था कि मेरी आत्मा भी निकल रही है, बाबा को टच किया, बाबा को टच करके फिर वापिस आ रहे। ऐसे हजारों बार करते करते कई बार क्या था, मैं इतना डीप साइलेंस में चला जाता था, तो हमारा साथ हमारा भाई होता था ना, कभी कभी मुझे ऐसा हिलाता था, हया चला गया करके, क्योंकि इतना साइलेंस हो जाता था। तो ये बाबा ने अच्छे अच्छे अनुभव और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कराए। और एक मैं अभ्यास करता था, वो फिर मैं लास्ट में आपको करा दूंगा, कि कैसे हम यहां बैठे हैं और शिव बाबा मेरे ऊपर है, ये आप अनुभव करो अभी भी, शिव बाबा हमारे ऊपर है और बाबा से एक रेज आ रही है, एक पावरफुल रेज, उसका कलर है ब्लू वायलेट, ब्लू वायलेट कलर, जैसे यहाँ सिर पे आती, धीरे 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 सिर से पूरा ब्रेन आंख कान करते करते गले में, फिर छाती में, फिर पूरा ऐसे छाती करते पेट से पूरा पैर में, और फिर हमारा शरीर पूरा ब्लू वायलेट हो गया, और ब्लू वायलेट होके फिर हमारे शरीर के जो अंदर से जो निगेटिव एनर्जी है, जो भी जम्स है निगेटिव, जो भी रोग के जंतु है, वो जल के भस्म हो रहे है। ये अभ्यास मैंने बहुत किया, इससे मुझे बहुत फायदा हो गया। तो ये अभी हम सभी अभ्यास करेंगे, लास्ट अभी 5 मिनट बाकी है, तो सभी अभी अलर्ट हो जाओ एकदम, सब तैयार है। मैं आपको बताता जाऊंगा कमेंट्री के थ्रू, और वैसे वैसे आप करते जाना, ठीक है। बाबा निराकार रूप में मेरे ऊपर है, एकदम सिर के ऊपर, बाबा से एक पावरफुल रेस निकल रही है, सीधा मेरे सिर पे, धीरे धीरे ब्रेन आंख नाक सब एकदम धीरे धीरे ब्लू वायलेट होता जा रहा है, धीरे धीरे रेस जो है गले में, छाती में, पेट से होते हुए दोनों टांगों से नाखून तक पहुंच गई है, अब मेरा पूरा शरीर ब्लू वायलेट हो गया है, शरीर के अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी है किसी भी रोग के जर्म्स है, उस रेश के थ्रू भस्म होता जा रहा है, मेरे शरीर के अंदर कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है, जो भी निगेटिव एनर्जी है जो भी निगेटिव जर्म्स है सब भस्म होते जा रहे हैं, अब मेरा शरीर एकदम प्योर, इसके अंदर कोई भी रोग नहीं है, एकदम प्योर। साथ साथ हमारा जो आत्मा है उसका भी पावर बढ़ता जा रहा है। आत्मा के अंदर जो निगेटिव एनर्जी है वो भी भस्म होती जा रही है। अब मेरा शरीर और मैं आत्मा दोनों प्योर, कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं इसमें। मेरा शरीर भी लाइट होता जा रहा है। आत्मा भी लाइट होता जा रहा है। मैं धीरे धीरे फरिश्ता बन के ऊपर की ओर, धीरे धीरे ऊपर की ओर चांद तारे सूर्य के धीरे धीरे ऊपर की ओर अब सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन के चारों ओर चक्कर लगाते हुए मैं आत्मा परम धाम की ओर जा लाल लाल प्रकाश मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम जा चारों तरफ लाइट ही लाइट शक्तिशाली सब आत्माएं उनके बीच में से गुजरते हुए सीधा परम धाम बाबा को मिलकर बाबा से शक्तियां ले रहे हूं। मैं आत्मा बाबा को टच करके बाबा मुझे आत्मा में सुख शांति पवित्रता सबसे भरपूर कर रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अपने मुझे सर्व गुणों से भरपूर कर दिया। अब धीरे धीरे हम नीचे की ओर बाबा को शुक्रिया करते हुए सूक्ष्म वतन में जा सारे हमारे एडवांस पार्टी दादी दीदिया बाबा मम्मा उनसे मिलते हुए हम साकार वतन के तरफ नीचे की ओर चांद तारे सूर्य के नीचे हम पूरा शांतिवन के ऊपर देख रहे शांतिवन को। धीरे धीरे हम अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने सीट पे पहुंच जाते हैं, बाबा को दिल से शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने हमें भरपूर कर दिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इस प्रकार हम अपने आप को बीच बीच में चार्ज करने के लिए ये विधि अपनाएंगे तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी कभी डाउन नहीं होगी। ओम शांति।